अब इसका वो हल क्या देते हैं, अब आपस में जो बातें कर रहे हैं बैठ के, तो अब क्या किया जाए, अब वो तो मोहब्बत करते हैं, अब क्या करें हम, एक तो लो यूसुफा, कत्ल कर दो यूसुफ को, इसको रास्ते से ही हटा दो, ना रहेगा बात ना बजेगी बांसुरी। वही बात है ना कि भाई ये जो कांटा है ना उसको रास्ते से ही हटा दो, अब या फेंक दो इसको किसी जमीन में, या कहीं दूर दराज इसको फेंका, या तो कत्ल ही कर दो या फिर इतनी दूर फेंका वापिस ही ना आए। तो इससे क्या होगा, यफ़ू लकुम वज़हु अबीकुम, खाली हो जाएगा तुम्हारे लिए चेहरा तुम्हारे बाप का, यानी यूसुफ जब होगा ही नहीं तो तुम्हारा बाप जाहिर है चारों ना चार, अब उसको तुम्हें सारी अटेंशन देनी पड़ेगी, जाहिर है फिर तो कोई और रहेगा ही नहीं, हमारा काम भी बन जाएगा। यानी बजाय इसके कि वो लोग देखते हैं कि देखो यूसुफ में कितनी खूबी है, बाप इसको प्यार करते हैं, इसकी तरफ उनका मोहब्बत जाता है, तो हमें भी इस तरह की खूबियां अपनानी चाहिए, हमारा भी कह रहा है इंसान सोचने क्या लगता है, इसको रास्ते से हटाओ। आप देखते हैं ना, ये सिर्फ यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की बात नहीं है, आप आम जिंदगी में भी देखें, जब इंसान को किसी से हसद हो जाता है, जब इंसान को कोई अच्छा नहीं लगता, कोई ऐसा मसला हो जाता है, तो वो क्या कहता है कि इस फलां की वजह से हो रहा है ना, इस फलां को रास्ते से हटा दीजिए, ना ही वो रहेगा तो मेरा काम सही हो जाएगा। यानी बजाय इसके कि मसले का हल करे, वो उस इंसान के दर पे हो जाता है। आपके मसलन जॉब पे कोई है, जॉब पे है कोई जो आपसे आगे जा रहा है, या जिसकी जिसको बहुत ज्यादा इसकी बात सुनता है, या इसको ज्यादा आगे आगे ये है, तो आप कहते हैं किसी तरह इसका पत्ता काटो, किसी तरह इसको हटा दो, ना ये रहेगा तो ना ये मुझे, मैं फिर आगे आगे जाऊंगी। उसी तरह आप देखें बार दफा ऐसे होता है कि एक बीवी है वो दूसरी बीवी से हसद करती है, वो कहती है ये ना होगी तो पता नहीं मेरा मकान कितना ऊंचा हो जाएगा अपने शोहर की नजर में, ससुराल में हो सकता है, ये रिश्ता ना होगा, मेरी सास देवरानी जिठानी ना होगी तो पता नहीं क्या मैं अपने हस्बैंड की नजर में उनकी कितनी आगे हो जाऊंगी, उनकी आंख का तारा बन जाऊंगी। इतना स्टूडेंट नहीं होगा उसको मैं पीछे करूं, अगर वो पीछे हो जाएगा तो फिर मैं उस्ताद की नजर में आगे हो जाऊंगी, तो ये नहीं होता। इंसान को अपने इखलास को बढ़ाना होता है, अपने ऊपर तवज्जो देनी होती है, बजाय अपनी सारी एनर्जी दूसरे को हटाने में लगाते, जब इंसान अपनी एनर्जी पूरी नेगेटिव एनर्जी लगाता है, दूसरे को हटाने में सारी अपनी एनर्जी सर्व कर देता है, तो फिर उसको अपने ऊपर काम करने का वक्त ही नहीं रहता, और इतनी प्लानिंग ही नहीं कर सकता कि वो अपनी कोई इसलाह कर सके। जब आप देखती है तो उसके अंदर कोई खूबियां तो होंगी ना, जिसकी वजह से वो किसी की आंख का तारा है, या जिसकी वजह से वो किसी काम में आगे आगे है, या जिसकी वजह से उसको अप्रिशिएट किया जाता है। आप अपने अंदर वो खूबियां पैदा करें, बजाय उसको वो उसको पुल करें पीछे के, इसको हटाओ आगे से, ये हटेगा तो मेरी जगह बनेगी। यही बात अफवानी यूसुफ ने की, उन्होंने कहा इसको हटाओ भी हमारे बाप का चेहरा हमारे लिए खाली हो जाएगा, यानी उनकी तवज्जो सारी फिर हमारे ऊपर हो जाएगी, अगर कोई और रह जाए नहीं तो फिर उनको किसी और को क्या देखना होगा, फिर हम नहीं रह गए ना, फिर तो हमारी तरफ तवज्जो उनको करनी ही पड़ेगी। और फिर क्या कह रहे हैं, अब पता तो है कि ये गलत काम है ना, अगर इंसान का जमीर भी तो होता है ना, ये पता है कि ये गलत काम है और ये काम नहीं होना चाहिए, तो अब क्या कह रहे हैं, तो सकून में बाद ही कौन सोलही, तो तुम हो जाना उसके बाद सालिह नेक, तो इसके बाद फिर नेक हो जाना, उसके बाद तुम तौबा कर लेना। ये देखें कैसा शैतान इंसान को पट्टी पढ़ाता है, तो देखो कत्ल कर दो या उसको दूर फेंको, अब अंदर से जमीर बोलता है कि नहीं बात तो ये सही नहीं है वैसे ना, फौरन शैतान दिल में क्या डालता है, कोई बात नहीं उसके बाद तौबा कर लेना, उसके बाद तुम नेकियां कर लेना, अल्लाह माफ करने वाला बड़ा गफूर रहीम है, अल्लाह ताला माफ कर देगा तुम। क्या आज यही नहीं होता, आज कितने ही लोग अपने आप को यही बहाना सुझा के गलत काम कर लेते हैं, आज कर लो बुढ़ापे में तौबा कर लेना, नहीं कुछ ज्यादा, जब बूढ़ी हो जाओगी नहीं कुछ ज्यादा, फिर कोई बात नहीं, मैंने कौन से सारी उम्र ये करनी है। अच्छा चलो लास्ट टाइम बस ये कर लेती हूँ, उसके बाद हज कर लूंगी, हज से तो वैसे सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। अच्छा शादी का मौका आ रहा है, चलो आप खूब अपने नफ्स की ख्वाहिशें पूरी कर लो, जो दिल चाहता है वैसे कर लो, शादी तो एक ही दफा होनी है ना, उसके बाद तौबा कर लेंगे, कोई बात नहीं। ये सुझाता है शैतान, कल इतने नफल पढ़ लूंगी, कल तौबा के नफल पढ़ लूंगी, माफी हो जाएगी, वैसे भी अल्लाह ताला तो माफ कर ही देते हैं। तो ये किसकी, देखिए आज भी वही चीज है और 4000 साल पहले भी वही बात थी, देख रहे हैं ना आप, आपको तो नहीं लग रहा होगा कि ये 4000 साल पहले की बात है, कि पहले गलत काम करने के लिए बाद का वक्त है, हमारे हर नेकी का काम जो होता है ना उसके लिए हम बाद का वक्त रखते हैं, जो गुनाह का काम होता है वो आज करेंगे, जो नाफरमानी है उसके लिए कभी ये नहीं कहते, फरमाबरदारी उसके लिए कभी नहीं कहते आज करूंगी, नेकी का काम आज करूंगी, उसमें देर क्यों लगे, नाफरमानी का काम वो कहते हैं वो आज कर लेती हूँ, लेकिन बाद में करूंगी, मेरे बाद ही, उसके बाद। हमारी जिंदगी में कितना ये बाद का वर्ड है ना, बाद में नेक बन जाऊंगी, बाद में कुरान पढ़ लूंगी, बाद में सीख लूंगी, बाद में करूंगी, हर चीज बाद है, जो नेकी है वो बाद है, आज है, क्यों नेकी के लिए बाद का वक्त रखते हैं, बाद का तो कुछ भी पता नहीं है, बाद आएगा भी या नहीं, इन्होंने कैसे खूबसूरत प्लानिंग की ना, फिर बाद में नेक हो जाएंगे, एक दफा इस कांटे को तो हटाओ, शैतान इंसान को किस तरह बहकाता है, सही कहा था ना याकूब अलैहिस्सलाम ने, शैतान इंसान का खुला दुश्मन। अच्छा अब जब ये बातें हो रही थी तो कौल अकाइल, कहा एक कहने वाले ने, उनमें से एक भाई ने कहा, ला तक्तुलू यूसुफा, देखा करो, देखिए अल्लाह ताला फिर भी किसी के दिल में तो कोई बात डाल ही देता है, कत्ल ना करो, वो अलकुवे सी गयाबत अलजुब, डाल दो इसको अंधेरे कुएं में, देखो अगर तुमने कुछ करना है ना तो इसको कत्ल ना करो, कत्ल करना तो बहुत ही बुरा काम है, तो उससे कम बुरा काम कर लो, ये इसको इस एक कुएं में डालो, ये तकलीफ की बात उससे जा रहा थी, उठा लेगा उसको कोई काफिला, इन कुन तुम फासिलीन, अगर हो तुम करने वाले, अगर तुमने कुछ करना ही है ना, इसको रास्ते से हटाना ही है, तो मेरे ही मानो तो इसी कुएं में फेंको, कोई ले जाएगा उठा के लावारिस सा बच्चा समझ के, और हमारी जान छूट जाएगी, हम बाप के भी फेवरेट बन जाएंगे, और बड़ा गुनाह जो है वो कत्ल वाला वो भी नहीं कर होगा हमसे, तो ये ज्यादा बेहतर है। अब उन्होंने बात ठान ली, ये फैसला कर लिया, अब ये उनकी डिस्कशन यहां तक पूरी हो गई, ये इसके ऊपर सबने क्या एग्रीमेंट किया कि कुएं में फेंक देते हैं, लेकिन अब कैसे फेंके, बेटे कैसे जाने वहां तक कुएं तक, अब इसका क्या करें, बाप से इजाजत कौन लेगा। अब नेक्स्ट सीन आप देखें कि ये लोग अब लेके अपने बाप के पास आते हैं और क्या कह रहे हैं, अब ये दूसरा हाल हुआ अबाना, उन्होंने कहा ए हमारे अब्बा जान, लगा क्या है आपको, लता अमन नाला यूसुफ, क्या आप हमें अमीन ही नहीं जानते यूसुफ के मामले में। अब देखिए बात करने का तरीका आप जरा देखिए ना, ये नहीं कहा कि हम जरा यूसुफ अलैहिस्सलाम को हमारे साथ भेजेंगे, यूसुफ को भी हमारे साथ जाने दें, हम कहीं जा रहे हैं सैर के लिए कहीं, तो आप यूसुफ को हमारे साथ भेजें, लेकिन कैसे बात शुरू करते हैं, जैसे नहीं बच्चों ने आपसे कोई बात नहीं मानी होती तो कहते हैं आप तो कभी मुझे जाने ही नहीं देती ना, आप तो मुझे कभी कोई चीज लेके ही नहीं देती ताकि आप मान ले दे, तो आप आगे से क्या कह रहे हैं, यानी पहले बात शुरू की चीज से की है कि दूसरे को गिल्टी करके शर्मिंदा करके कि वही इमोशनली ब्लैकमेल करना, देखें अब हमने तो पिकनिक का प्रोग्राम बनाया, आप तो वैसे कभी यूसुफ के मामले में हम पे कोई भरोसा ही नहीं करते, आपको हम पे एतबार ही कहां, वह इन्ना लहू लना फिहून, पर बेशक हम तो उसके लिए यकीनन खैर पाए, हालांकि आपको पता नहीं हम तो इसके इतने खैर पाए, आखिर भाई भी खैर पाओगे तो और कौन होगा। अच्छा अब ये रिश्तों की भी इंसान वो डाल के ना वास्ता डाल के और बहुत खैरख्वाही शो करने की कोशिश करता है कि अब हम तो इसके भाई हैं, अब हमसे ज्यादा इसका खैरख्वाह कौन हो सकता है। हालांकि ऊपर से क्या बन रहे हैं और दिल में क्या है, हम भी तो आज ऐसे नहीं करते कि जहां पे दोस्त गाड़ियां ऊपर ऊपर से हम खुशी का इजहार करें, ऊपर ऊपर से हम दूसरे को मुबारकबादें दें और दिल जल रहा हो और दिल में दूसरे की बदख्वाही हो। देखिए हसद सिर्फ इससे नहीं होता कि आपको दूसरे का कभी कभी तो पता चल जाता है कि इसको हसद है, और कभी हासिद जो है वो दोस्त के रूप में आता है। दोस्त बना होता है ऊपर ऊपर से बहुत अच्छा, ऊपर ऊपर से बहुत मुलायम, लेकिन उसके दिल में हसद की आग भड़क रही होती है। अब इस हसद ने देखो इनको चैन से नहीं बैठने दिया, वो हसद की आग दिल में नहीं रही, अब वो एक्शन में आने लगी है। अब इसके लिए प्लानिंग हो गई और उसके बाद बाप के पास दिल में कत्ल के इरादे और बाप को कह रहे हैं कि हम तो इसके खैरख्वाह हैं। तो जुबान से इंसान अपने आप को कितना ही खैरख्वाह साबित करे, असल बात यह है कि जो खैरख्वाह होता है ना उसके अमल से पता चलता है ये खैरख्वाह है। जुबान से कहने से तो इन्होंने भी क्या दिया था हम खैरख्वाह, क्या वो थे खैरख्वाह? आपके एक्शन बताते हैं कि आप किसके किसी के कितने वेलविशर हैं। कहते हैं अरसिल हु माना वतन, आप भेजिए ना इसको हमारे साथ कल, यरता वयल अब कि वो चर ले खा ले। तो जिसमें आपको कहा जानवरों का चरना, यानी जैसे आप शहर वगैरह पे भी जाते हैं तो सारा दिन चरने की तरह ही होता है कि कोई स्नैक खा रहे हैं, कभी फिर ड्रिंक्स निकाल रहे हैं, फिर कभी खाना खा रहे हैं, फिर कभी कुछ हो रहा है तो कभी चाय पी जा रही है। तो पिकनिक का मतलब ही क्या होता है, खाना पीना खेल कूद। तो हम ले जाए उसको वहां पे, ये खाएगा पिएगा तो खेले कूदेगा, और इन्ना लहू लहाफिज़ून, और बेशक हम इसके लिए हम बता हिफाजत करने वाले हैं, आप फिक्र ही ना करें हम इसकी बड़ी हिफाजत करेंगे वहां पे। जो इसने कुछ करना ना ना वो फिर वो सिर्फ बातें करता रहता है, कभी कहते हैं हम प्यार करें, बस उसने वो बातों से ही अपने दूसरे को राजी करने की कोशिश करता है, कुछ था नहीं दिल में तो उलट प्लानिंग थी। अब आगे आप देखते हैं कि याकूब अलैहिस्सलाम ये नहीं कहते पिकनिक पे जाना हराम है, पिकनिक पे नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते तुम के वहां खाओ पियो और बाहर तुम इसके लिए जा रहे हो, नहीं। इससे पता चलता है कि अगर आप कोई तफरीह करना चाहते हैं तो तफरीह करना कोई हराम काम नहीं है, ये इंसान की फितरत है। खेल और तफरीह इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, इस्लाम में इसकी इजाजत है। ऐसे खेल और ऐसी तफरीह जायज है जिसमें कोई आप हराम काम ना हो, कोई शरई तौर पे कोई गलत बात ना हो, वो आप कर सकते हैं तफरी, उतनी एंटरटेनमेंट तक आपको इजाजत है। ये नहीं है बिल्कुल कि कोई लोग उसे कहें कि नहीं भाई पिकनिक करना ही गलत है, एंटरटेनमेंट ही गलत है, कोई खेल कूद करना ही नहीं चाहिए। इसका इंसान को हक है और इसमें कोई कबाहत नहीं है। तो उन्होंने किस चीज पे लेकिन इतराज किया, उन्होंने पिकनिक पे नहीं किया, उन्होंने क्या कहा, खाला इन्नी ला यहज़ुनुनी अन तज़हबू बिही, बेशक मुझे तो अलबत्ता गमगीन करती है कि तुम ले जाओ इसको, यानी मेरे लिए ओझ की गम लग जाता है कि यूसुफ मेरे से दूर हो, मैं उसकी जुदाई नहीं बर्दाश्त कर सकता, उसकी जुदाई मेरे पर बड़ी भारी गुजरती है, तो मैं इसको अपनी नजरों से ओझल कर लू। मैंने आपको बताया ना हुज़्न क्या होता है, हमेशा याद रखिये हुज़्न और खौफ, एक उन्होंने फरमाया हुज़्न और दूसरा व अखाफ, दोनों में फर्क क्या हो, मैंने आपको वहां पर भी बताया था, बताया था ना क्या फर्क होता है, हुज़्न जो होता है वो माजी का होता है और खौफ जो होता है वो मुस्तकबिल का होता है। ठीक है, तो कहते हैं कि गम है मुझे ये गमगीन करती है बात कि तुम इसको मेरे से दूर ले जाओगे ना, और मैं डरता हूँ या अकुला हो ये अबू, मैं डरता हूँ कि कहीं इसको भेड़िया ना खा ले, वाफिलून और तुम इस हाल में कि तुम उससे वाफिल हो, ये ना हो कि तुम इधर उधर लग जाओ और इसको पीछे से कोई भेड़िया, क्योंकि जाएगा वहां पे जंगल में जाएंगे वीराने में या दूर शहर से निकल के पिकनिक के लिए जाते हैं ना, शहर से निकल के तो वहाँ पे तो भेड़िए वगैरह ये जानवर वगैरह होते हैं, तो ये ना हो कि इसको कोई भेड़िया खा ले और तुम अपने मशवरों में हो। वैसे भी वो जानते थे कि उनका उनके जो भाई है इतने खैर ख्वाह नहीं है, और ये ना हो कि कोई नुकसान पहुंचाए यूसुफ अलैहिस्सलाम को, उनको खदशा तो था। लेकिन देखें जब इंसान की तकदीर में कुछ लिखा होता है ना, तो वो कितना भी हालात को फोर्सी कर ले लेकिन वो हालात बदल नहीं सकता। तो उन्होंने आगे से क्या जवाब दिया, कालू उन्होंने कहा, लाइन अकलहु ज़िब्ब, अलबत्ता अगर खा गया इसको भेड़िया, वो नहनु उस्बा, जबकि हम एक गिरोह है, इन्ना इज़न लख़ासिर, तो हम बड़े ही खसारा पाने वाले हैं, फिर हमारा फायदा क्या, फिर तो हम बड़े निकम्मे, अगर हमारे होते हुए हमारे भाई को भेड़िया खा जाए, कैसी बातें करते हैं हम, इतना बड़ा जित्था है। अब आप खुद देखें, वो बार बार अपने आप को कह रहे हैं हम इतना बड़ा ग्रुप है, हम इतना उस्बा उस्बा बार बार कह रहे हैं, इससे आप देखें कि इनके जहन कैसे थे, तो उनको बड़ा इस चीज पे नाज था, बड़ा इस चीज पे फख्र था कि हमारा जत्था, हम कितने ज्यादा हैं, अपनी तादाद का कितना नाज था। हमें भी तो नहीं अपने खानदानों का, अपनी बरादरियों का इसका बहुत नाज होता, बड़ा फख्र होता, हम इतने बड़े खानदान से हैं भाई। अल्लाह तआला को ये चीज पसंद नहीं है, ना ही इस बड़ाई जिताने से अल्लाह के यहाँ कोई बड़ा हो सकता है, चाहे आप कितने भी बड़े खानदान से हो। देखिए इनकी कोई बड़ाई नहीं हो गई, ये बार बार अपने आप को कहते जा रहे हैं, 10 भाई होना कोई मामूली बात नहीं है, किसी को कहा जाए कि किसी के 10 बेटे हैं तो कितनी लोगों रोग में आ जाते हैं ना, कि कोई बड़े जत्था है, एक बड़ा ग्रुप है। तो वो कहते हैं हम एक बड़ा ग्रोह है, अगर हमारे होते हुए हमारे भाई को भेड़िए ने खा लिया, हमारा क्या फायदा फिर। पनम्मा ज़हबू बिही, अब यहाँ तक ये सीन खत्म हो गया, अब इन्होंने मना ही लिया बाप को, जब ऐसी बातें कर करके तो उन्होंने बाप को कन्विंस कर लिया और लेके चल पड़े यूसुफ अलैहिस्सलाम को। पनम्मा ज़हबू बिही, अब तीसरा सीन आप देखें कि जब ले चले ये यूसुफ अलैहिस्सलाम को, वह अजमाउ अन यजअलूहु फी गियाबतिल जुब, और उन्होंने इत्तेफाक कर लिया इस बात के ऊपर कि अब वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं के अंदर डालेंगे ही डालेंगे। उनको ये उन्होंने अपने अंदर ये बात ठान ली थी। तो उस वक्त क्या हुआ, कहा जाता है कि इन सब ने अपने दिल सख्त कर लिए थे, बाप ने इनकी बातों में आके अपने प्यारे बेटे को इनके सपोर्ट कर दिया, जाते हुए भी सीने से लगाया, प्यार किया, दुआएं देके रुख्सत किया। अब आप खुद सोचें कि एक बड़ा लाडला बच्चा है, छोटा भी है सब में, छोटा भी है, माँ भी नहीं है इसकी, वैसे भी प्यारा है, अपने अखलाक में भी प्यारा है, और फिर वो तो ये जान भी गए थे कि इसको बहुत बड़ा मकाम मिलने वाला है। अब ऐसा बेटा कितना बाप को प्यारा होगा। लेकिन बाप की आंखों से हटते ही उन भाई लेनी शुरू करती, बुरा भला कहने लगे और मारते पीटते हुए ले गए और इस कुएं के पास पहुंचे और हाथ पांव रस्सी से जकड़ के कुएं में गिराना चाहा, तो ये एक एक के दामन से चिमटते थे, एक एक से रहम की दरखास्त करते थे, लेकिन हर एक झिड़क देता था और धक्का देके मार पीट कर हटा देता था। मायूस हो गए तो सब ने मिलकर इनको मजबूत बांधा और कुएं में लटका दिया। आपने कुएं का किनारा हाथ से थाम लिया, लेकिन भाइयों ने उंगलियों पे मार मार के इससे भी हाथ छुड़ा लिया। आधी दूर तक आप पहुंचे थे कुएं में कि उन्होंने ऊपर से रस्सी काट दी, तो आप तह में जा गिरे, कुएं के दरमियान में आकर खड़े हो गए, और जब यहाँ पे कुएं की गहराई के अंदर आप खड़े हैं, तो उस वक्त देखो अल्लाह की तरफ से कैसी मदद आती है। अल्लाह ताला ने फरमाया, वा अवहैना इलैही, और वही की हमने उसकी तरफ, ला तुनब्बी अन्नहुम बि अम्रिहिम हाजा, अलबत्ता तू जरूर आगाह करेगा इनको इनके काम के बारे में, इस काम के बारे में तू इनको जरूर बताएगा, यानी ऐन उस मुसीबत के वक्त, उस सख्ती के वक्त अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से एक वही की। और ये वही कौन सी होती है, वही का मतलब क्या होता है, खुफिया इशारा। अब ये वही, क्योंकि अभी तक नबूवत नहीं उनको मिली थी, ये वही कैसी थी, अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम की माँ के दिल में डाला था कि मूसा अलैहिस्सलाम को पानी में डाल दे। तो इसी तरह इनके दिल को अल्लाह ताला ने तसल्ली दी कि आप गम ना करें, एक दिन ऐसा आएगा कि आप इनको इस वाक्य के बारे में खुद बता रहे होंगे, आप इनको बताएंगे। वहम ला यशऊरून, और वो शऊर भी रखते होंगे, उनको पता भी नहीं होगा, उनको याद भी नहीं होगा। एक दिन अल्लाह ताला आपको ऐसे मुकाम पे पहुंचाएगा कि इनको वो आपको पहचान भी नहीं सकेंगे कि आप वही यूसुफ हैं। जैसे आप सोचे ना कि कोई मुसीबत बताओ, आप उसको जाके कहती हैं किसी मिसाल के तौर पर किसी ने किसी को घर से निकाल दिया, या किसी ने किसी के साथ बड़ा जुल्म किया, कमजोर है आज, बेसहारा है, तो आप उसको जाके तसल्ली देती हैं, फिक्र ना करो एक दिन तुम्हारा आएगा, जो दिन तुम्हारा होगा तुम फिर इनको बताओगे कि मैं वही हूँ जिसको तुमने धुतकारा था, मैं वही हूँ जिसको तुमने घर से निकाला था। एक दिन अल्लाह तुम्हें इतना ऊंचा मुकाम दे देगा, तो कितनी तसल्ली दिल को हो जाती है ना उस ऐसे इंसान को। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने इनके दिल में डाली बात कि अल्लाह इस सख्ती के बाद आसानी लाएगा और अल्लाह ताला इन भाइयों को तुझे गलबा देगा। ये आज तुझे पास कर रहे हैं ना, लेकिन अल्लाह तुझे गुमान करेगा। ये आज जो तेरे साथ कर रहे हैं कि तू इनको इनके ये करतूत याद दिलाएगा और ये शर्म से तेरे सामने खड़े होंगे और इनको ये भी नहीं पता चलेगा, इनको ये भी नहीं याद होगा कि ये वही यूसुफ है जिसको हमने कुएं में फेंका था। और ये हुआ था, आप देखिए कि आप जब आगे इसी किस्से में पढ़ेंगे तो इन्होंने पहचाना नहीं था यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब वो बादशाह बन गए थे। कहां वो यूसुफ जिसको हमने कुएं में फेंका था बेयारो मददगार, और कहां ये बादशाह मिस्र। उनको क्या पता था कि ये मिस्र के तख्त का वारिस बन जाएगा। तो उन्होंने प्लानिंग, वही कहते हैं ना कि लोग प्लान करते हैं, पीपल प्लान एंड अल्लाह प्लान, और अल्लाह इज द बेस्ट ऑफ प्लानर्स। अल्लाह ताला की प्लानिंग जो होती है ना, फिर कि कोई आपके लिए कितना ही बुरा चाह ले, अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि एक कुएं के अंदर फेंक आए, अंधा कुआं है उसके अंदर फेंक आए, आप देर यार मददगार। आप देखें वीराने में कुआं है, ना कोई जान ना पहचान, ना कोई आने वाला यहाँ से, ना गुजरने वाला, अब कौन इस बच्चे को देखेगा, ये बच्चा वहीं पढ़ के सड़ के खत्म हो जाए भूखा प्यासा, कौन जाने कि एक यूसुफ यहाँ पे पड़ा हुआ है। लेकिन कोई भी ना जाने, तो अल्लाह तो जानता है, प्लानिंग अलग होती है बंदे के लिए। कोई भी इंसान जब दुखी होता है, परेशान होता है, सारी दुनिया मुखालिफ हो जाए, सब दुनिया नुकसान पहुंचाने के दर पे हो जाए, लेकिन ये याद रखें कि वो एक रब जरूर है जिसकी ताकत सबसे बड़ी, ये क्यों भूल जाते हो। सारे मुखालिफ भी हो गए, हालात मुखालिफ हैं, लोग मुखालिफ हैं, दुश्मनियां चल रही हैं, हर तरफ से खतरे मुंह खोले भी बढ़ रहे हैं, अगले लम्हे का नहीं पता कि क्या हो जाने वाला है, तो ये क्यों भूल जाते हो कि एक सबसे बड़ी ताकत ऊपर बैठी हुई है जिसकी तदबीर चलती है। लोग चाहे कितनी भी तदबीरें कर लें, बस लोग के हक में थे। तो अल्लाह ताला ने इनके लिए तसल्लियां उतारी आसमान से, अल्लाह ने वही कर दी दिल के अंदर। जब इंसान मजलूम होता है, जब इंसान हक तो होता है लेकिन लोग फिर भी उसको सता रहे होते हैं, और अगर वो मोमिन है ना, तो फिर अल्लाह ताला खुद उसके दिल में तसल्ली डाल देता है, तुम ना फिक्र करो अल्लाह तुम्हारे साथ है। और ये बहुत बड़ी एक अल्लाह की नेमत है जो सिर्फ मोमिन को मिलती है कि इतने मुखालिफ हालात में भी उसका दिल पुरसकून रहता है। आप सोचे एक बच्चा है, खुद ही सोचे, वो इस कुएं के अंदर पड़ा हुआ है और बजाहिर कोई भी ऐसा नजर नहीं आ रहा सबब कि जिससे कोई आके उसको निकालेगा या इसकी कोई फरियाद सुनेगा। जितना मर्जी चीखते रहे वहां पे, चिल्लाते रहे वहां पे, बोलते रहे पुकारते रहे, कोई सुनने वाला नहीं है वहां पे, मगर अल्लाह है। कभी ना ये भूला करें, आप अकेले हो जाए, पूरी दुनिया दूसरी तरफ हो जाए, मुखालिफ हो जाए, आप बिल्कुल तन्हा रह जाए, तब भी अगर आप हक पे हैं, ताकि अगर आप सही रास्ते पर हैं तो अल्लाह ताला आपको थामने वाला है, कोई थामने वाला का सहारा काफी है। और फिर वो अल्लाह से प्लान करता है ना, वो अल्लाह ताला जब निकालता है ना अंधेरों से, अल्लाह ताला जब मुसीबतों से परेशानियों से निकालता है, तो देखो वो कैसे सबक बनाता है कि जिनको इंसान सोच भी नहीं सकता। और इससे क्या पता चलता है कि बार दफा इंसान किसी चीज को अपने लिए बुरा समझ रहा होता है, आसान तक रहो शैन फहुआ खैर उल्लको, तुम अपने लिए कोई चीज बुरी समझते हैं लेकिन उसी में तुम्हारे लिए खैर होती है। अगर ये यूसुफ अलैहिस्सलाम यहाँ पे ना डाले जाते, यहाँ से ना निकाले जाते, मिस्र में ना पहुंचते, कहाँ से बादशाह बनते, वहीं पे पड़े होते कहीं फलक। अगर अल्लाह ताला ने वहां तक उनको पहुंचाना था, उनको बादशाह देनी थी। और फिर ये भी हमें पता चलता है कि कुछ ऊंचे मकाम को पाने के लिए, दर्जात को पाने के लिए आजमाइशों से गुजरना पड़ता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम इतने लाडले हैं, बाप के इतने लाडले हैं कि वो उनको एक लम्हे के लिए भी अपने सामने से हटा नहीं सकते, कैसे मुझे गमगीन कर देगा, इसको मेरे सामने से ना लेकर जाओ, इतनी देर भी नहीं जुदाई बर्दाश्त कर सकते। कितना लाड होगा, कितना प्यार होगा, पैगंबर की औलाद है, दादा पैगंबर, परदादा पैगंबर, और देखो बेहियार और मददगार कुएं में पड़े हैं। अल्लाह वालों के ऊपर भी कभी कभी ऐसी आजमाइशें आ जाए, कोई दुखी ना हो, हाय मेरे ऊपर मुसीबतें, हाय मेरे ऊपर परेशानियां, जो दुखी दिल है वो सूरह यूसुफ को पढ़ ले और देख ले कि वो यूसुफ जो बाप की आंख का तारा था किस तरह कुएं में गिरा पड़ा। और बच्चा है, कोई बड़ा आदमी, बड़े आदमी घबरा जाए, ये तो बच्चा है, लेकिन देखो कैसे पुरसकून से वहां से हिम्मत से बैठे हुए। तो इसमें आपको यूसुफ अलैहिस्सलाम का भी किरदार पता चलेगा और भाइयों का भी पता चलेगा और उनके बाप का भी पता चलेगा। अब अगला सीन देखें, अब क्या होता है नेक्स्ट सीन में कि याकूब अलैहिस्सलाम बैठे हैं और जाऊं इशान यबकून, वो आ गए अपने बाप के पास इशा के वक्त रोते हुए, आए आंसू बहाते हुए रोते हुए आ गए, क्या मसला हो गया, कालू या अबाना, ए अब्बा जान, इन्ना रहबना, बेशक हम चले गए थे, मस्तबिक दौड़ लगाने के लिए, वो तरक ना यूसुफा, और हम छोड़ गए थे यूसुफ अलैहिस्सलाम को, इंदा मताईना, अपने सामान के पास, ताका लहु ज़िब्बु, फिर खा गया उसको भेड़िया। आए हम रोते भी आ रहे हैं, इशा के वक्त क्यों आए रोते भी, इसलिए कि रात का वक्त हो जाएगा, जब हम अंधेरे में जाएंगे तो हमारे जज्बात को पता ही नहीं चल सकते, रहो वादों से रोते रहो, क्योंकि उस वक्त थोड़ी आपकी तरह की इलेक्ट्रिसिटी बिजली थोड़ी थी कि हर तरफ लाइटें हो, रात के बाद कोई जुर्म करना वैसे भी आसान हो जाता है। तो मे भी ये भी शो करना हो सकता है, ये भी शो करना हो कि हम तो सारा वक्त उसको ढूंढते रहे और उसके बाद ये हो गया और रात हो गई और हम आ गए, तो झूठे टफे भाते हुए आ गए, और क्या नाम लगे कि हमारे भाई को, तो हम तो उधर गए थे दौड़ लगाने के लिए, हमने तो रेस लगाई थी, और फिर वो ही हुआ ना जो आपने कहा था कि वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को तो पीछे से एक भेड़िया ने खा लिया, और वो मैं अंत भी मोमिन और नहीं तू मानने वाला, मैंने आपको बताया था ईमान के बाद ला आ जाए ना तो फिर मान, नहीं तू मानने वाला हमको, वाला कुन्ना सादिकीन, और चाहे हम सच बोलते रहे आपने कौन सा हमारी बात माननी, आप तो पहले ही हम पे शक कर रहे थे कि इसको भेड़िया ने खा लिया। देखिये उन्होंने वही बात को लेके बहाना कर लिया जो उस वक्त खदशा जाहिर किया था याकूब अलैहिस्सलाम ने कि इसको भेड़िया ने खा जाए, वही उन्होंने बात को बना लिया एक्सक्यूज और आ गए इस तरह से और कहा कि इसको तो भेड़िया ही खा गया और आप कौन सा हमारी बात मानेंगे, चाहे हम सच ही बोलते रहे आपने कहा माननी हमारी बात, आप तो पहले ही हमें इस तरह से समझते, यानी खुद ही ऐसे असल में खुद के अंदर गिल्ट था ना तो इसलिए ऐसी बात बोल रहे हैं। और क्या किया अला कमीसी ही भी दमिन कर से, और वो ले आए उसकी कमीज पर खून झूठा लगा के, झूठा झूठा खून लगा के, कहा जाता है कि बकरी जिबा की और यूसुफ अलैहिस्सलाम को फेंकने से पहले उसकी कमीज उतार ली, उसके ऊपर खून लथपथ करके और ले आए, लेकिन क्या किया, एक गलती हो गई क्योंकि जाहिर आधी मुजरिम तो थे नहीं, और दूसरी बात यह है वैसे भी अगर चोर कितना भी होशियार हो जाए ना लेकिन अपना कोई ना कोई निशान जरूर छोड़ जाता है, तो सारे काम कर लिए इतने सारे भाई थे, वैसे कहते हैं उस्मान है हम, लेकिन देखो किसी को भी ये समझ ना आई कि भला भेड़िया अगर खाएगा तो कमीज उतार के थोड़ी खाएगा, थामा था और उसके ऊपर फूल लगा। ज्यादा भेड़िए ने क्या इतनी टाइम दिया कि पहले तुम कमीज उतारो फिर मैं तुम्हें खाऊंगा और फिर फूल भी लगा के चला गया। तो जाहिर है याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए बात को। अब उनका जवाब देखिए आप, उसके बाद समझ भी गए बात को मगर कोई और वो तो कहे कि तुम झूठे, तुम मक्कार, तुम ऐसे तुम वैसे, तुम मुझे ऐसे बेवकूफ समझते हो। तो अब इसे क्या कह रहे हैं, खाला बल सब गलत लखू अनफुसुकुम अमरा, हाँ बल्कि आसान कर दिया तुम्हारे लिए तुम्हारे नफ्स ने एक काम को, जो काम तुम करना चाहते थे तुम्हारा है? तो वो काम चाहे कितना ही बंदा था लेकिन चूंकि जब इंसान को कोई काम करने का इरादा कर लेता, उसको शौक लग जाता उसका, तो उसका नफ्स उसको वो काम भी खूबसूरत बना के दिखा देता। बुराई को तुम्हारे लिए तुम्हारे नफ्स ने कितना खूबसूरत बना के दिखा दिया कि वो बुराई करनी तुम्हारे लिए आसान हो गई। समझ आई आपको बात, यानी बुराई को सम्मत होता ही क्या, बुराई को इतना खूबसूरत करके दिखाना कि जो बुराई इंसान करना चाहता ना वो उसको बड़ी ब्यूटीफुल नजर आए। मतलब है कोई बेहयाई का काम करना चाहता है, आप बुरा समझ के थोड़ी कर रहा होता, वो बेहयाई उसको इतनी खूबसूरत लगती है, उसको इतनी अट्रैक्टिव, इतनी मजेदार लगती है कि वो फिर उसको कर गुजरता है, उसके लिए आसान हो जाती है ना। फिर इसी तरह जो तुमने सोचा था, जो तुमने प्लान किया था, वो जो तुम चाह रहे थे ना, वो चीज हालांकि कितनी बुरी थी, भाई का भाई को इस तरह से उठा के फेंक देना, जबकि देखें वैसे भी ये बुरी चीज है, जो जुल्म है जो उन्होंने किया, लेकिन ऊपर से ये बात कि वो मुसलमान और ये भी मुसलमान थे, ये नहीं है कोई काफिरों की बात नहीं हो रही, ये मुसलमान औलाद है उनकी, ये भाई है मुसलमान है। और फिर तो तुमने उनके साथ ये किया, कोई बाहर का नहीं है कि कोई चलो दीनी भाई हो, वो नहीं है, एक ही बाप की औलाद हो, और उसके साथ तुमने इतना बुरा फील किया, बुराई को खूबसूरत बना दिया तुम्हारे नफ्स ने तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए आसान हो गई। फिर नफ्स ऐसे ही करता है कि जब कोई चीज आपसे करवानी होती है ना, तो उसी चीज को इतना ब्यूटीफुल कर देता है, इतनी उसमें अट्रैक्शन आ जाती है, इतनी वो खूबसूरत लगती है आपको, क्या कहते हैं ये काम इतना मजेदार है, ये तो मैं करूं ही करूं। वो अल्लाह की नाफरमानी का काम होता है लेकिन आपका नफ्स उसको कितना प्यारा बना के दिखा रहा होता है, कितने उसमें मजे चटखारे ब्यूटी दिखा रहा होता है, वह इंसान फिसल जाता है, वही काम करना आपके लिए आसान हो जाता है। तो आगे से क्या कहते हैं, सब्र जमील, सब्र ही अच्छा है, कितनी प्यारी बात की है। सब्र तो वैसे ही अच्छी चीज है मगर सब्र जमील क्या होता है, जमील सब्र जमील है जिसमें कोई शिकवा ना हो, कोई शिकायत ना हो। इतनी बड़ी बात सुन के खुद सोचें कि वो बेटा जो इतना लाडला, बच्चे इंसान को वैसे ही औलाद बहुत प्यारी होती है, वो बेटा जो इतना लाडला है उसके बारे में अब ये इतला मिल रही है कि उसके कमरे आए और जी उसको भेड़िए ने खा लिया। अब वो बेटा कहाँ है, उसके साथ क्या हो रहा है, जाहिर उनको ये तो पता चल गया कि ये बात तो झूठ है, लेकिन जाहिर है वो बेटा जहां पे भी है कुछ पता नहीं है उसका, वो किस हाल में है, किस जगह पे है, उसने कुछ खाया, उसने कुछ पिया, उसने क्या किया, वो खतरे में है या वो कहीं हिफाजत की जगह पे है। जाहिर है इंसान के जहन में कितने ख्याल आते हैं, और ऐसी प्यारी औलाद के लिए तो क्या कह रहे हैं, सब्र जमील, इसमें ना कोई शिकवा करना ही नहीं, मैं ऐसा सब्र करूंगा कि जो मेरा ताल्लुक मेरे रब से और मजबूत कर दे। बार दफा इंसान सब्र करता है लेकिन साथ शिकायतें भी करता है, ये सब्र नहीं होता फिर। और बार दफा इंसान कहता है बड़ा सब्र कर लिया मैंने, अब तो इंतहाई हो गई है, अब तो मैं सब्र नहीं कर सकती। ये भी वो कह सकते थे कि तुम लोगों की मैं हरकतें बहुत दिन से बर्दाश्त कर रहा था, अब तो इंतहाई हो गई, अब तो तुमने इंतहाई कर दी, बस अब तुम्हारा ये कर दूंगा वो मैं। क्या कह रहे हैं, वल्लाहु मुस्तआन अला मा तसिफ, मदद चाही जा सकती इसके खिलाफ जो तुम बयान कर रहे हो, तो मेरा मददगार अल्लाह ही है, मैं उसी से मदद चाहूंगा। ये किरदार और ये जवाब सिर्फ एक नबी दे सकता है। इतना इतमाद है अल्लाह ताला की जात पे कि कुछ भी कोई कर ले, लेकिन दुनिया लाख बुरा चाहे, ये लाख बुरा कर ले, मेरा रब जो चाहता है वही होता है और मैं उसी की रजा पे राजी हूं। मुझे ये यकीन है कि मेरा रब मेरे साथ बुरा नहीं करेगा। देखिए कितना बड़ा गम था जो इनके ऊपर आया ना, खुद ही सोचे कितना बड़ा गम है। इनको इतनी इनकी महबूब चीज, बेटा, औलाद कितनी महबूब है, उसका सोचे कितना गम होगा। लेकिन उन्होंने ये साबित कर दिया कि हर मोहब्बत जो है वो अल्लाह की मोहब्बत के अंदर है। अल्लाह ताला के सिवा किसी के साथ इतनी मोहब्बत करना जितनी अल्लाह ताला से करनी चाहिए जायज नहीं है। जब इंसान मोहब्बत करता है ना, उसमें भी एतदाल होना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे फरमाया है कि हर मोहब्बत सिवाय अल्लाह की मोहब्बत के लिए, के हर मोहब्बत दुख का सबब बनती है। क्योंकि ये देखिए ना, जिससे भी आप मोहब्बत करते हैं, या तो वो दुनिया में ही बेवफाई कर जाता है, या वो दुनिया से चला जाता है, या आप दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, दुख का सबब बनती है सिवाय अल्लाह की मोहब्बत के। अल्लाह ताला ने जो मोहब्बतें हमारे दिल में डाली है ना फितरी तौर पर, जैसे औलाद की मोहब्बत है, पेरेंट्स की, बहन भाइयों की, इनको भी एतदाल में रहना चाहिए। शौहर की मोहब्बत हो गई, दोस्तों की मोहब्बत है, ये भी ऐसा ना हो कि वो मोहब्बतें लिमिट से बाहर हो जाए और अल्लाह की मोहब्बत से भी ऊपर चली जाए। फिर इसीलिए ऐसा होता है कि जब वो मोहब्बतें अल्लाह से भी ज्यादा आगे बढ़ के हो जाती है ना, तो फिर अगर वो चीज इंसान से रुखसत हो जाए, तो फिर इंसान ऐसा गम करता है, ऐसा गम करता है कि वो उसके साथ ही मर जाता है। वो रिश्ता टूटा, वो मोहब्बत खत्म हुई है, वो दुनिया से वो इंसान अगर चला गया तो इंसान जीते जी को भी मर जाता है। वो ये भूल जाता है कि दुनिया में अल्लाह ने किस लिए भेजे, वो अपनी आखरत नहीं बनाता, आखरत भी बर्बाद कर लेता, क्योंकि वो तेरा भूलता रहता है, ये चीज मेरे से गई तो गई क्यों, उसका गम बनाता रहता। उन्होंने यहाँ पे फरमाया सब्र जमील, सबर ही अच्छा, और अल्लाह ताला जो फैसला करेगा इसके ऊपर भरोसा रखें। परेशानियां भी आएंगी, मुसीबतें भी आएंगी, लोग भी सताएंगे, बहुत कुछ होता है, लेकिन इंसान फिर उस वक्त भी अपने दिल को हमेशा चेक करता रहे कि मेरा दिल फिर अल्लाह से राजी है या नहीं, मैंने किससे मदद चाहिए। क्या पता जो चीज अल्लाह मुझसे ले रहा है, इससे बेहतर चीज मुझे देनी है, इससे इसलिए मुझसे ये चीज ले ली है, मुझे अल्लाह के ऊपर भरोसा है, उसने मेरे लिए कोई भी गलत फैसला नहीं करना, उसने मेरे लिए कभी भी कोई बुराई नहीं जा सकता। और अल्लाह ताला ने खुद फरमाया, एक हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते कि अल्लाह ताला अपने बंदे के साथ उसी तरह जैसा गुमान वो बंदा अपने रब से रखता है, जैसा आप अपने रब से गुमान रखेंगे ना, अल्लाह ताला वैसे ही आपके लिए होंगे। अगर आपका अल्लाह ताला के बारे में यही गुमान है कि मेरा रब मेरे लिए हमेशा अच्छा ही करेगा, ऐसा ही होगा इंशाल्लाह, और ऐसा होता ही है। इंसान ना समझे ना, तो वो समझता कि नहीं ये सब बहुत बुरा हो गया, हालांकि वो नहीं जानता कि इसमें उसके लिए कितनी बड़ी खैर छुपी होगी। जो आजमाइशें आती है, जो मुश्किलात तकलीफें आती है, उसमें भी कोई ना कोई खैर का पहलू होता है। और इसी में आप देखेंगे, इस वाक्य में भी आगे चल के आप देखेंगे कि आजमाइश भी जो आई, फिर आगे खैर ही लेकर आई। और वैसे भी पैगंबरों के ऊपर तो जब आजमाइशें आती हैं तो उनके दर्जे और बुलंद से बुलंद तर होते जाते हैं। अल्लाह ताला आजमाता जरूर है इंसान को, चाहे वो पैगंबर हो या आम इंसान, अल्लाह ताला आपके ईमान को आजमाएगा जरूर। आप अब ऐसे हालात में जाके फिर क्या करते हैं, जितना जिसका ईमान मजबूत होता है उतनी बढ़ती है, तो अल्लाह ताला लेके भी आजमा लेता है। फिर इसमें इंसान क्या रिएक्शन शो करता है वही तो लिखा जा रहा है। अल्लाह ने जिंदगी और मौत बनाई इसलिए तुम फिर हर तरह की सिचुएशन में क्या अमल करते, तो इनका अमल देख ले, इनका जवाब देख ले क्या है। वजा सैयारत, आया एक काफिला, अरसलु वारिदहुम, तो उन्होंने भेजा अपना पानी लाने वाला, जो उनका पानी लाने वाला था वारिस जो था उसको भेजा। अजला बलबहु, तो उसने डाला अपना डोल, उसने कुएं में अपना डोल डाला। एक काफिला गुजर रहा था, कहा जाता है कि ये काफिला सीरिया से ईरान से मिस्र की तरफ जा रहा था, रास्ते में वो जो ने वारिस को भेजा उसने जाके डोल डाला। जब डोल डाला तो उसके अंदर साथ ही यूसुफ अलैहिस्सलाम उसके साथ चढ़ के आ गए। जब उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा, इतना खूबसूरत बच्चा और यहाँ पे गिरा पड़ा मुझे मिल गया। आप देखिए उस जमाने के अंदर इंसान भी दिखते थे, इंसानों की भी वैल्यू होती थी, प्राइस होती थी, और इंसानों की मंडियां लगती थी। जैसे ये बकरी, सोना, चांदी, इनके बाजार होते हैं, इनके अंदर ये दिखते हैं, इस तरह इंसान दिखते थे। तो ये तो समझ ले खजाना मिल गया उसको, कि ये एक मुझे एक बच्चा मिल गया, इसको तो बेच के तो अच्छे पैसे, तो उस बड़ा खुश हो गया। उसने कहा लिया बुशरा, कहा वाह खुशखबरी, जैसा कहते ना वाह गुड न्यूज, तो खुशी में चीख पड़ा। हाँ गुलाम, ये तो एक लड़का है, ये एक लड़का मिल गया भाई मुझे, अक्सर रू हो आतन, और उन्होंने छुपा लिया उसको सामान तजारत समझ के, सामान समझ के इसको छुपा लिया कि ये तो हमें फायदा देगा। क्यों छुपा लिया? कहा जाता है कि दो इसके अंदर चांस हैं, ये आप ये वारिद जो थे इन्होंने शायद दो तीन वारे दो, तो इन वारिदों ने क्या किया कि काफले वालों से यूसुफ अलैहिस्सलाम को छुपा लिया, कि ये ना हो कि काफले वाले भी इसमें साथ हिस्सा डाल लें और वो कहें कि अच्छा अब ये बच्चा तो हमें भी इसमें से प्राइस दी जाए और वैसे वो भी अपना हिस्सा मांगना चाहे, तो इसलिए उनसे छुपा लिया। दूसरा मतलब ये हो सकता है कि उन्होंने जाके काफले वालों को बताया कि देखो हमें ये बच्चा मिल गया है, वाह देखो ये कितना खूबसूरत बच्चा, और उसको सब ने छुपा लिया, वारिदों ने नहीं काफले वालों ने छुपा लिया, ताकि इसके मालिक कहीं देख ना ले। भाई यहाँ पे किसी का बच्चा मैं भी खेलता वेलता आके गिर गया है, तो मालिक भी शायद ढूंढते ढांढते कहीं यहीं पे ना आ जाए, वो छुपा ले उसको, आपस में जाके माल बांट लेंगे वहां। वल्लाहु अलीमुन बिमा यअमलून, ये बड़ी खूबसूरत बात है, जब वो ये छुपा रहे कोई नहीं जानता, बाप कहाँ बैठे हुए, वो गमगीन हो रहे हैं और बेटे से जुदा हो गए हैं, घर वाले कहाँ हैं, ये लोग भी छुपा रहे हैं, दुनिया को किसी को नहीं पता, लेकिन एक रब की साथ वो ऊपर बैठी हुई है ना, वो जानती है, वो वॉच कर रहा है कि इस वक्त यूसुफ कहाँ है और उनपे क्या गुजर रही है। हमें तो आज पता चल रहा है ना, जाए 4000 साल पहले उस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम पे क्या गुजर रही होगी, अकेले अजनबी लोगों के अंदर कोई उठा के अब लेकर जा रहे हैं। तो लेकिन ना जाता है कि एक जगह पे ये भी आता है, मगर वो इतनी ऑथेंटिक नहीं है बात जो इतनी कसीर ने कहा, कि वे भी उनके जो भाई थे ना वो भी इधर उधर फिर आते रहे बार बार, 3 दिन तक यूसुफ अलैहिस्सलाम उस कुएं में बैठे रहे, तो वो लोग चक्कर लगाते रहे कि अब देखते हैं कि क्या होता है। फिर जब काफले वालों ने निकाला तो वो भी वहीं पे मौजूद थे, और उन्होंने देखा भी कि उनका भाई इस तरह से हो रहा है, तो उन्होंने उनकी कीमत ले ली, थोड़ी सी कीमत उनको कहा कि हम इसको बेचते हैं, और थोड़ी सी कीमत लेकर और उन्होंने उनको बेच दिया, और भाइयों ने उनको बेचा, और भाई थे जो देख रहे थे। इतनी ऑथेंटिक बात नहीं है, यही ज्यादा ऑथेंटिक है कि काफले वालों ने उनको छुपा लिया उस वक्त, और अब वो पहुंच गए वहां पे मिस्र, इजिप्ट पहुंच गए। अब इजिप्ट के बाजार में यूसुफ अलैहिस्सलाम बिक रहे हैं, कहां वो यूसुफ जो बाप का लाडला, और कहां ये कि अब मंडी में खड़ा हुआ बिकने के लिए। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला चाहे तो किसी इंसान को उठा के कहां से कहां पहुंचा सकता है। इंसान के हालात जिंदगी भर एक जैसे नहीं रहते, कभी जिंदगी में अप आता है और कभी डाउन, कभी दिन। वो यूसुफ जो बाप का इतना लाडला है,
कि भाई उसे हसद करने लगे, आज ये हाल आ गया कि वो मंडी में बिक रहा है। अगर हमारे जैसे कोई लोग हो तो वो तो इतने डिप्रेशन का शिकार हो जाए कि हाय। अब देखिए कई औरतों के साथ ऐसे होता है, माँ बाप के घर में बहुत लाडली होती है, ससुराल में आके बहुत कुछ उनको सुनना पड़ता है, सहना पड़ता है, तो वो उसी डिप्रेशन के अंदर ही वो बीमार हो जाती हैं, या इतने ही हर वक्त अपने हालात का रोना रोना, हर वक्त वो उस एक ज़हनी मरीज बन जाती है कि हम क्या थे और क्या होगा। तो जिंदगी में याद रखिए, अगर डाउन है तो अप भी है, उतार है तो चढ़ाव भी है, रात है तो दिन भी तो है, ये क्यों भूल जाते हो? यूसुफ अलैहिस्सलाम का सबर देखे, अगर बाप का सबर था ना सबर जमीन, तो यहाँ पे यूसुफ अलैहिस्सलाम का भी सबर देखे, रो रो के हलकान नहीं हो गए, चीख चिल्ला नहीं रहे कि आए मैं कहाँ एक पैगंबर का बेटा और मैं कहाँ बिकने लगा। इससे बड़ी क्या बड़ी फजीलत की बात हो सकती कि एक पैगंबर के बेटे हैं, आप तो किसी अमीर के बेटे होंगे, किसी शोहरत याफ्ता इंसान के बेटी बेटी हो सकती है, या किसी बड़े नाजों में पली की बेटी हो सकती है। उस लड़के का सोचिए जो एक पैगंबर का बेटा, कितनी बड़ी सआदत है, दादा पैगंबर है, पर दादा घर नेक है, खुद बाप का लाडला है, कैसे फूलों की तरह उसको घर में रखा होगा, और कहा मिस्र में बिक रहा है, और कोई पूछने वाला नहीं है, और बिक भी कितने पे रहा है, वह शराब को उन्होंने बेच डाला उसको कम कीमत पे, कम दिरहमों में, गिने चुने, कहा जाता है तकरीबन 20 दिरहम में बिक गए। क्यों क्यों इतने कम दिरहम में बिकर का कान उसी ही मिनट जाहिदी, क्योंकि वो उससे बेरहमत थे। या खुद ही सोचे ना, वो अपनी जान छुड़ाना चाहते थे, एक लड़के को पकड़ के लेकर आए, सामान जब बाजार में बिकता है तो कितने का बिकता, कितने कम कीमत पे वो बेचते थे ना चोर। क्यों? इसलिए कि उसने तो ऐसे ही उठाया होता मुफ्ती के अंदर, वो तो कहता है जल्दी जल्दी बिके, ये ना हो कि इसके मुझे मैं कहीं पकड़ा जाऊं और इसका असल मालिक ही आ जाए। यही उनका भी हाल था, छुपते छुपाते लड़के को लेकर आए थे, छुपा के लेकर आए थे, जाहिर है अब वो उन्होंने बड़ी कीमत क्या मांगनी थी, उन्होंने तो बस जितने का भी बिके बिके सही, और हम जो है ना अपनी कीमत ले और हम अपनी एक तरफ हूँ, ये ना हो इसके मालिक ही कोई आ जाए, कोई आके इसको पहचान ही ना ले। अल्लाह ताला ने फरमाया उन्होंने तो बड़ी कम कीमत पे उसको बेच दिया। कहा यूसुफ जो हीरों से ज्यादा कीमती, पता होगा कि ये वो बंदा है, वो बच्चा है जिसने बड़े होके पैगंबर बनना है, ये वो बच्चा है जो मिस्र के तख्त का मालिक बनेगा, बादशाह बनेगा इस मुल्क का, जिसने जिसके बाजार में ये बिक रहा है, और वो जो हुस्नो जमाल में इतने ज्यादा बड़े हुए थे ना, बहुत ही हसीन थे, बहुत ही खूबसूरत थे यूसुफ अलैहिस्सलाम, और उनको उन्होंने क्या कैसे बेचा, जैसे कोई गिरी पड़ी चीज हो ऐसे बेच दिया। तो कभी कभी ऐसे भी होता है कि जो बेचने वाला होता है, जिसके पास जो चीज होती होता है कि उसके पास कितनी वैल्यूएबल चीज है, कितनी कीमती चीज है, वो कहते हैं ना हीरे की कदर जौहरी जानता है। तो वाकई कभी कभी इंसान के पास बड़ी कीमती चीजें होती हैं, लेकिन इंसान इतना ना समझ होता है, इतना बेइल्म होता है कि वो अपनी कीमती चीज की कीमत ही नहीं जानता, उसको पता ही नहीं कि कितनी कीमती है, और वो उसको गंवा देता है, उसको बहुत कम पे बेच देता है। जैसे मसलन आप खुद ही अभी हमने कुरान पाक की बात की थी, आप खुद ही सोचें इसकी असल कदर और कीमत अगर आप जान लेना, तो आप कहें कि ये तो मुझे दिलो जान से ज्यादा प्यारा है, लम्हा जो मेरा गुजर रहा है ये तो मेरी खुशकिस्मत ही है कि अल्लाह ने मुझे इसके लिए चुन लिया, फिर आप जान छुड़ाने वाले ना बने। ये तो आपको आखिरत के बाजार में जाके पता चलेगा कि इस कुरान की क्या कदर और कीमत थी, जिसको आप छोड़ छोड़ के दूसरे काम कर रहे हैं ना, वो आपको दिखाए जाएंगे कि ये काम आपने किया और ये आपके पास चॉइस थी कि आप ये भी कर सकते थे और ये भी कर सकते थे, आपने ये चूज कर लिया, और फिर उस खसारे का एहसास होगा, हाय हमने कितना खसारे का सौदा किया, हमने कितने कम में अपने वक्त को बेच दिया, आज आपका वक्त भी बहुत कीमती है, लेकिन आप कितने टकों में अपने वक्त को बेच रहे हैं जब आप उसको जाया कर देते हैं, कीमत का अंदाजा नहीं है आज। बहुत कम कीमत में आप इसको बर्बाद कर रहे हैं, कभी फजूल बातों में, कभी फजूल घूमने फिरने में, कभी फजूल और मशगूलात में, मशगलों में, अपने इस कीमती जिंदगी के वक्त को आप बहुत हकीर फायदे के लिए, बहुत हकीर कामों के लिए बेच रहे हैं। जैसे कि उन्होंने यूसुफ को उस बाजार में कितने चंद दिरहम के लिए बेच दिया। अगर उनको इसकी कीमत पता चलती होती उस वक्त, क्या कभी बेचते? इतनी खूबियों के मालिक को, इतने हसीन बच्चे को, इतने बाप के लाडले को, एक पैगंबर को, तो इंसान जो चीज उसके पास है, जो नेमत उसके पास है, उसकी कतरों कीमत जाने, उसको जाया ना होने दे। سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك ايات الكتاب المبين انا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين